नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड चैनल के सुनहरी तरंगों पर आपका स्वागत है और कार्यक्रम छू लो आसमान में आपके साथ है रमा बिजापुरकर, जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस IIM अहमदाबाद। इनसे बातचीत कर रहे हैं विकास मिटिसेन, जो है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज, प्रेसिडेंट IBG एंड द ऑनरी काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली। चलिए सुनते हैं छू लो आसमान।
हेलो, आज हमारे साथ हैं मिसेज रमा बिजापुरकर। ये मार्केटिंग की डॉयन है इंडिया में, इनसे बेटर बिगर एक्नॉलेज मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नहीं है। वेलकम मिसेज बिजापुरकर।
बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए।
ऑल इंडिया रेडियो 100.1 गोल्ड FM। मैं हूँ विकास मित्तसेन, ये तो मैं हर बार आपको बोलता हूँ। हमको ये बताइए, आपकी अर्ली लाइफ क्या है? आप बॉम्बे से हैं, कहीं और से आए हैं, इम्पोर्टेड हैं इनटू बॉम्बे? बॉम्बे में बॉर्न हैं?
नहीं, बॉम्बे में इम्पोर्टेड हैं। हाँ। मेरी मातृभाषा तेलुगु है। मेरा ससुराल महाराष्ट्र में है, मायका है आंध्र प्रदेश में।
ऑल इंडिया मतलब आप?
हाँ, बिल्कुल ऑल इंडिया, क्योंकि आई एम एन आर्मी ब्रैट। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, तो पूरे इंडिया में घूम आए, 2 साल यहाँ, 1 साल वहाँ, 3 साल वहाँ। और मेरे भाई को तो बोर्डिंग स्कूल भेज दिए, क्योंकि लड़की का एजुकेशन इम्पोर्टेंट था। मैं रही लड़की, इसलिए मुझे घर में रखा। कॉन्वेंट स्कूल्स हर जगह पे, उन दिनों में स्कूल्स में एडमिशन की कोई झंझट नहीं थी, तो चले गए।
ये कैसे लाइफ होती है आर्मी की? चिल्ड्रन जब ग्रो अप होते हैं, उनके दोस्त ही नहीं रहते होंगे।
नहीं,
क्यों हर बार, मतलब 2 साल में तो दोस्त बनते हैं, और जब तक आपके दोस्त बने क्लोज, आप निकल गए वहां से कहीं और पहुंच गए।
ऐसे सोचिए कि दोस्त बनाने में हमें टाइम नहीं लगता है। जहाँ पे भी जाओ, दोस्त नए दोस्त बनाते हैं, कभी पुराने दोस्त मिल भी जाते हैं। तो कुछ बच्चे तो वो इम्परमानेंस से घबरा जाते हैं, और कुछ बच्चे उसको एम्ब्रेस कर ही देते हैं। मुझे तो फ्रेंड्स बनाने में इजी है, अच्छा लगता है, टाइम नहीं लगता है। और जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, वो तो आज के कोई भी मिल जाता है।
अब वो तो आज की बात है ना, मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ।
पहले तो थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत लोनली होता था।
तो बॉम्बे कब आए?
हम बॉम्बे,
मुंबई, अभी तो मुंबई बोलना पड़ेगा।
मुंबई कुछ 35 साल हो गए, शादी के बाद आ गए बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे वैसे अडल्ट होम है, अच्छा लगता है।
तो आते से ही आपने फर्स्ट जॉब कहाँ लिया था?
मेरा फर्स्ट जॉब था एडवर्टाइजिंग में, लिंटास में, वो अलक पदमसी के साथ। वो तो बहुत ही शॉकिंग दिन थे, क्योंकि हम 20 साल के थे, हम कभी ज़्यादा एक्सपोज्ड भी नहीं थे। फिर बॉम्बे आए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आए, तो सब कुछ एकदम नया था, और एकदम एवरीथिंग वाज शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग एंड फन। तो 1 साल मैंने एडवर्टाइजिंग में काम किया था, पर फिर मैं मार्केट रिसर्च में स्विच हुई। और मार्केट रिसर्च तो मेरा, आई थिंक आई हैड फाउंड माय कॉलिंग। तो उसके बाद मैं मार्केट रिसर्च में ही रही बहुत साल तक, और इंडिया के बहुत मार्केट रिसर्च, अभी 3-4 जो बड़े एजेंसीज हैं, उन सब के अर्ली स्टेजेस में मेरी पार्टिसिपेशन थी। और फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट कंसल्टिंग में मूव हुए। तो मार्केट रिसर्च बहुत सारे चीज़ों पर किए, पॉलिटिक्स पे किए। उन दिनों ओपिनियन पोल्स उतने फैशनेबल भी नहीं थे, सब लोग, कुछ लोग करते थे। फिर एडवर्टाइजिंग के ऊपर मार्केट रिसर्च, औरतों को आपकी राय, आपकी जिंदगी कैसी है, राय कैसी है, बहुत कुछ ओपिनियन पोल्स के। तो वो मेरी,
ये सारा रिसर्च जो होता है, एक गाना सुन ले बीच में।
सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। प्यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलियां पूछ रही हैं, प्यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलियां पूछ रही हैं, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
मैं हूँ विकास मित्तसेन, हमारे साथ हैं मिसेज रमा बिजापुरकर, ये मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो मैं आ रहा हूँ उस बात पर। हम पूछ रहे थे कि मतलब है ना, ये जो मार्केट रिसर्च होता है ये एक्चुअल में काम आता है या खाली थप्पा लगाने के लिए, जो कंपनी को जो बेचना है तो बेचते तो वही हैं पर उसको ऑफिशियल बनाने के लिए मार्केट रिसर्च करते हैं, या हमेशा मैं मेरे माइंड में क्वेश्चन रहता था। आप अभी एक्सपर्ट मिल गए हैं, बताइए।
हाँ, कभी कभी तो रबर स्टैम्प के वजह से या टिक बॉक्स बोलते हैं ना, हाँ, कि मार्केट रिसर्च कर दिया, अभी सीईओ की बीवी से पूछ के उनकी राय लेके करेंगे, वो भी होता है। पर ज़्यादातर ये भी है, जैसे रेडार होता है प्लेन्स चलाने के टाइम पे, अगर वो रेडार बता रही है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आप उसके खिलाफ जाएंगे, तो क्रैश लैंडिंग की रिस्क आपकी खुद है। बहुत कंपनीज जो मार्केट रिसर्च पे स्पेंड करते हैं उसको कम से कम एक वार्निंग साइन लेते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी देखिए, वो एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि आपके दिन बुरे हैं, आपके दिन बुरे हैं, उसके आगे आप क्या करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, पर अगर दिन बुरे हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए कि इस टाइम पे मैं कैसे मेरा बर्ताव मैं कैसे प्लान करूँ, तो ऐसे सोचिए उसके बारे में। एस्ट्रोलॉजी भी बिल्कुल मार्केट रिसर्च के जैसे, ये डेटा पॉइंट्स हैं, कभी कंक्लूजन्स गलत हो सकते हैं। जैसे मेरी माँ की एक दोस्त थी, वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर थी, तो उसने कहा कि अरे अभी तो कोई मेरे बुजुर्ग गुजरने वाले हैं,
अच्छा?
क्योंकि मेरे हस्बैंड के यहाँ कर्म दशा लिखा हुआ है और मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी। असली बात बिचारी है कि वो गुजर गई तो वो डेटा ठीक था पर कंक्लूजन गलत था। तो मार्केट रिसर्च में भी ऐसे होता है। जब टाइटन कंपनी के लिए मैंने काम किया था, सबसे पहले टाइटन जब कंपनी स्थापना नहीं हुई थी, मैंने कहा कि प्लीज आप क्वार्ट्ज वॉच मत चलाइए, लोग नहीं खरीदेंगे, क्वार्ट्ज वॉच बनाएंगे तो आप डूबेंगे। पर अच्छी बात है कि हमारी बात नहीं सुनी, क्योंकि टाइटन टाइटन बन गई और क्वार्ट्ज वॉच इंडिया में आ गई, तो वो भी हो सकता है।
चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों
कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
आप अपने और चीजों के अलावा आप IIM अहमदाबाद में भी है ना लेक्चर देते हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ पर
जी।
वो कैसे हुआ और अभी क्या करते हैं वहाँ पे?
तो हम पहले विजिटिंग प्रोफेसर थे, एक कोर्स पढ़ाते थे बाहर से जाके। और पहले तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाते थे वो कोर्स में, तो हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वहाँ जाते थे और पढ़ाते थे। और अभी ये नई प्रोफेसरशिप आई है जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं, प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब जो लोग बाहर इंडस्ट्री में काम किए हैं उनको अंदर लिया जाता है प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस, की बाहर की प्रैक्टिस थोड़ा यहाँ अंदर लेके आए। तो थ्योरी भी अपनी जगह पे है, थ्योरी के बिना प्रैक्टिस तो यूजलेस है और प्रैक्टिस के बिना भी थ्योरी बढ़ती नहीं है आगे। इसीलिए प्रोफेसर मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये नई अपॉइंटमेंट है। उसके पहले हम विजिटिंग फैकल्टी का जाते थे, पर हाँ पढ़ाते हैं।
हर हफ्ते जाते हैं वहाँ पे क्या?
नहीं, जब मेरा कोर्स चलता है 3 महीने का टर्म पे तब अच्छा। हम जाते हैं, हर 4-5-6 ट्रिप लगाते हैं। ये कोर्स होता है कुछ 20-30 सेशन का। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अपने टीचर के साथ पढ़ाती हूँ।
मतलब
जो मुझे पढ़ाए थे प्रोफेसर जैन मेरे गुरु, वो और हम मिलके साथ में ये कोर्स पढ़ाते हैं।
अच्छा।
वो बिजनेस स्ट्रेटजी की कोर्स है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अच्छे प्रोफेसर्स जो होते हैं अपने स्टूडेंट्स को इक्वालिटी दे देते हैं। ये नहीं कि तुम हमेशा मेरे स्टूडेंट ही हो, तो वो बराबरी जब मिल जाता है तो उनकी बड़प्पन दिखाई देती है।
तो मैंने ये भी बात सुनी है, सिंस अपने IIM के बात कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट बहुत IIMs चालू करने वाली है। IITs, IIMs, लास्ट कुछ है ना मेरे शायद ख्याल से बजट में भी डिक्लेयर हुआ था कितना सेटअप करा है, इतना फंड एलोकेट करा है फॉर दिस.
अभी जम्मू में भी एक है.
हाँ एग्जैक्टली पूरे इंडिया में करेंगे और जरूरत तो है ही बिकॉज ये 4-5 IIM से क्या होएगा.
हाँ सही है, 4-5
इतना बड़ा पॉपुलेशन है और सारे के सारे अभी एजुकेट हो रहे हैं. अभी तो कोई भी नहीं है बच्चा जो एजुकेट नहीं हो रहा है.
अच्छी बात है.
कंपलसरी भी हो गया है और लोग भी जानते हैं
कि
इनका फ्यूचर तो एजुकेशन में रखा है आज, नॉट फ्यूचर.
बिल्कुल.
तो अभी काफी हो रहे हैं.
काफी हो गई है. करेक्ट.
ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए. अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए. मेरा क्या होगा सोचो तो जरा. हाय ऐसे न आए बरा कीजिए. ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. आपका अरमान आपका नाम मेरा तराना और नहीं. इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं. जचता ही नहीं आंखों में कोई. दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए. ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं. तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं. मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए. अब खुद ही सनम फैसला कीजिए. ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. ओ मेरे दिल के चैन.
पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी, ये क्या चीज है?
पीपल रिसर्च हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे अभी देखिए जब ऑटो की सेल्स कम हो रही है तो सब लोग को ओपिनियन है, पर पीपल को तो नहीं पूछ रहे हैं कि भाई अच्छा, आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं, या मिनिस्टर्स की ओपिनियन है, बड़े मार्केटिंग लोग की ओपिनियन है, पर वो पीपल की ओपिनियन क्या है। सिमिलरली ये जो ह्यूमन फेस ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या करती है पीपल के लिए। अगर आप बोलो कि GDP अरे 7% ग्रो कर रही है, बहुत दुख की बात है, 8% ग्रो करेगी तो कल्याण होगा, पर उसका मतलब है कि आम हाउसहोल्ड में क्या होता है, इनकम बढ़ता है, ऑक्यूपेशन बढ़ता है, क्या करते हैं,
वो कहां से आता है वो फिगर?
वो ये फिगर्स तो सप्लाई साइड से आते हैं, कुछ गवर्नमेंट पूरा मैक्रो बोलते हैं, मतलब पूरा आउटपुट देख के, कंपनीज के हालत देख के नंबर्स आते हैं, पर ह्यूमन फेस के लिए इसलिए हम पीपल रिसर्च बोलते हैं। जैसे अगर इवन रोड्स देखो तो बोलते हैं कि इतने 1000 किलोमीटर रोड्स दिए, इतने करोड़ों गैस कनेक्शन दिए, पर समझ में आना चाहिए कि ये किसको गया, और 100 औरतें हैं जो वीकर सेक्शन के हैं तो उनके कितने घरों में ये गैस है, और कितने लोग LPG यूज कर रहे हैं, तो वो पीपल का रिसर्च है। मतलब हाउसहोल्ड लेवल से हम इकोनॉमी देखते हैं, हाउ इंडियन हाउसहोल्ड्स अर्न, स्पेंड, सेव, लिव, एक्सेस पब्लिक गुड्स, जिसके पास ये इतने बैंक अकाउंट्स हैं जनधन में, तो कितने लोग वो अकाउंट को यूज करते हैं, कितने लोग के पास है, वो सब हम ग्राउंड लेवल से देखते हैं। वो थिंक टैंक और फैक्ट टैंक है, नॉट फॉर प्रॉफिट है वो।
तो ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ये परसेंटेज कहाँ से आता है, बट ठीक है जो बोलते हैं वो अपने सुन लेते हैं। USA में मैंने कई बार देखा है काफी कुछ इकोनॉमिक का नर्व जो है इट कम्स फ्रॉम हाउसिंग स्टार्ट्स। इंडिया में अभी तक ऐसी बात नहीं सुनी है,
नहीं,
वहाँ
नहीं।
पे मतलब है ना ये क्वार्टर में इतने हाउसिंग स्टार्ट्स हुए हैं, बिकॉज दैट लिंक्स एवरीथिंग, कि जितने हाउस होंगे स्टार्ट होंगे उतने वो सारी चीज़ें बिकेंगी, खरीदेंगे। इंडिया में कुछ भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं निकला है अभी तक।
नहीं, पर इंडिया भी इतनी कॉम्प्लेक्स है, जैसे आप वेदर का ही देख लीजिए, यहाँ पे पानी ज्यादा है, वहाँ पे ड्राउट है, तो सेम
बाजू के
जो 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 बिहार का जो इंडियन हाउसहोल्ड्स के हालत हम देखते हैं वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो साउथ तो अपने हिसाब से जा रही है, तो इसीलिए कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर बोलते हैं हम उसको,
इंडिया को।
हाँ, कि जहाँ भी देखो एक और हेड है रावण के जैसे।
तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है, तन मन लुटाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। दिल में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है, तारे सजाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
हमारे साथ हैं मिसेज रमा बीजापुरकर, मैं हूँ विकास मित्तल सेन। आप बहुत कंपनीज के बोर्ड्स पे हैं, एक तो क्वेश्चन ये है कि क्यों इतने कंपनी के बोर्ड पे, आप कैसे, आपके माइंड में रहता है कि अलग अलग कंपनीज का जब जाते हैं तो हर बार पेपर लेके जाना पड़ता है, पढ़ के बात करनी पड़ती है, क्यों 10-15 बोर्ड पे कैसे? आई थिंक है ना लिमिट है अभी 20 का, आप तो रीच हो गए होंगे 20 के।
नहीं, हम एक ही टाइम पे इतने सारे बोर्ड्स पे नहीं थे, बोर्ड्स पे हैं, फिर टर्म खत्म होता है, हाँ। फिर और एक सेट ऑफ बोर्ड्स पे जाते हैं।
ओके।
अभी हमारे 4 या 5 बोर्ड्स हैं, और आप सही बोलते हैं कि अगर ज्यादा ही बोर्ड्स हैं तब तो फोकस नहीं हो पाती है, पर जो हम 10-15 ईयर से बोर्ड्स पे हैं तो अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो काफी इंडिया के हूज हू के लिस्ट हैं।
आपके प्रोफाइल में बहुत बोर्ड्स दिखे थे।
हाँ, क्योंकि जैसे मैं 9 साल इन्फोसिस के बोर्ड पे थी, 5 साल भारत पेट्रोलियम के बोर्ड पे थी, 9 साल एक्सिस बैंक के बोर्ड में थी, तो वो टर्म खत्म होते होते वो बोर्ड खत्म हो जाता है, वो बोर्ड का टर्म। आई एम अहमदाबाद के बोर्ड पे मैं 10 साल थी ऐसे। पर क्यों? क्योंकि ये जो जूरी ड्यूटी बोलते हैं ना, मतलब देखभाल करना, ये जो किसी को तो करना चाहिए ना, तो
बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है अभी तक। मतलब है ना, इंडिया में जो था, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है बोर्ड्स का, मोस्टली एक टाइम तक वो पपेट डायरेक्टर रहते थे। रियलिटी है, अभी लोगों को अच्छा नहीं लगता जब मैं बोलता हूँ, बट वो सिर्फ अपना नहीं, चलो मैं वो बात तो करूंगा ही नहीं।
हम कहते हैं कि जब वो मुंह खोलते हैं वो कैजू नट खाने के लिए खोलते हैं, नहीं तो नहीं, वो ऐसे भी कहा जाता है, मुझे मालूम है।
लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो रहा है,
काफी चेंज हो गया ये रेगुलेशन के वजह से।
रेगुलेशन आ गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है
जी,
जब कंपनी फेल होती है या कुछ गलत होता है तो वो बोर्ड पे क्या कर रहे थे
जी, बिल्कुल।
अब वो क्वेश्चनिंग आने लग गया है, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ अ जेल टर्म
जी।
So, अभी इतना इजी नहीं रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना।
और इसके दो रिस्पॉन्सेस होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार किसको चाहिए, ये गड़बड़ चले जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि देखो अगर हम सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे तो अंदर से कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए बोर्ड्स पे भी जाते हैं। एक तो लर्निंग होती है, पर दूसरी बात यह है कि किसी को तो देखना चाहिए ना, नहीं तो हम सब लोग बैठ के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो हम खुद क्या कर रहे हैं इसके बारे में।
तो आपका एक्सपीरियंस बोर्ड्स का क्या बोलता है, कंपनीज अभी क्या मतलब बेटर होते जा रही हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी बेटर हो रही है, कॉरपोरेट गवर्नेंस कुछ बेटर हो रहा है क्या, या पहले जैसे ही चल रहा है?
देखिए, झटके में इस देश में कुछ नहीं होता है, हलाल से होता है सब कुछ। तो ये धीरे 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 रेगुलेटर्स के वजह से, लोगों के समझ के वजह से, अभी शेयर होल्डर्स भी समझ गए हैं, शेयर होल्डर्स भी अभी नहीं बैठ रहे, इन्वेस्टर एडवाइजरी होता है, ये नहीं कि एजीएम में आके चुपचाप जो भी बोलो, तो सब ओर से चेंज हो रही है धीरे धीरे। तो आई थिंक डर तो आ गया है कि गड़बड़ होने से, फिर भी ये नहीं कि गड़बड़ नहीं होता है, बट आई थिंक वी डेफिनेटली मूविंग टू क्लीनर। आप देखिए कितने लोग जो बैंक्स को वापस पैसे नहीं दिए हैं उनकी क्या हाल होती है, पहले ज़माने में तो कुछ होता ही नहीं था, अभी तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। तो मेरे ख्याल में धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म आ रही है।
जो पैसे नहीं देते ना उसके बारे में भी मेरे थॉट्स हैं, लेकिन यहाँ नहीं बात करेंगे अपने ऑफलाइन बात करेंगे
ठीक है।
एकेडमिक्स में आप क्या रोल प्ले करते हैं? आपने ऑलरेडी मेंशन तो करा ही है कि आप आई एम अहमदाबाद के बोर्ड पे थे, अभी भी हैं या नहीं?
नहीं, 10 साल हो गया है, और ये बोर्ड्स में ऐसा है कि नए लोग और नई सोच आना चाहिए। अगर सेम बंच ऑफ पीपल हैं तो वो लोग एक ही जैसे सोचते हैं, और फिर टीचर्स भी वही तरह सोचते हैं। तो मैंने देखा है जब भी नए लोग बोर्ड पे आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ऐसे क्यों है, और आंसर हो नहीं सकता है कि पहले था,
भी था,
अभी भी है, अभी भी होगा। तो इसीलिए चेंज अच्छा है, पर 9-10 साल पे वहाँ पे थी, फिर वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट के बोर्ड में भी थे कुछ 7-8 इयर्स। तो देखिए ये ट्रस्टीशिप होता है, कभी कभी ये बोर्ड्स पे जो मराठी में बोलते हैं कंटाल आ जाता है ना, तो फेडअप हो जाते हैं। फिर एक बार मैंने मेरे एक बुजुर्ग आदमी है जो हम गुरु मानते हैं, हमने उनको उनसे कहा कि वाई बॉदर, उन लोग का पैसा है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा, वो गवर्नमेंट से लड़ाई करके थोड़ा तंग आ गए थे कि उन लोग का पैसा है, उन लोग को करने दीजिए। पर उन्होंने मेरे को कहा कि इट इज़ नॉट देयर मनी, इट इज़ आवर मनी इन ट्रस्ट, एंड यू बीइंग आस्क्ड टू बी अ ट्रस्टी, और अगर वो आपको मुश्किल लगता है तो आप मत कहिए, पर इसलिए रिजाइन मत करिए कि उनका पैसा है। तो उस दिन से मेरे दिमाग में आया है कि अगर मेरा टाइम यूज करना है किसी में तो टू मेक द रिच रिचर के जगह पे इफ यू गो टू दीज प्लेसेस थोड़ा बहुत यू कैन रिले रेस के जैसे होता है ना, जितने दिन अपना बैटन हम चला सकते हैं एनर्जी है चलाएंगे, उसके बाद एनर्जी खत्म होती है तो और कोई फ्रेश आके बैटन लेके आगे जाएगा. पर जितने दिन वहां पे हैं अगर थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं जो नेक्स्ट लोग वापस उल्टा नहीं कर पाते हैं तो आगे बड़ी है ना गाड़ी और थोड़ा स्ट्रॉन्गर गाड़ी है तो उसके हिसाब से
पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे भी है. किस हाँ, चीज को बोलते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस?
जैसे एक तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक मनी से बनाए हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पर और एक है कॉल्ड बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड. ये रिजर्व बैंक ने मतलब मिडवाइफ किया है उसके उनका कि बनाइए. और ये सारे बैंक्स एक वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे. तो वो कोड ऑफ कंडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए ये बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनी है. तो हम उसके गवर्निंग काउंसिल पे थे. तो पीरियोडिकली चेक करते हैं कि बैंक्स अपने कोड पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. जैसे समझिए अगर फिक्स डिपॉजिट की डॉक्यूमेंट है तो आपको मालूम है 200 पेज की डॉक्यूमेंट होती है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है या जो फीस हैं अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये सब वॉलंटरी कोड्स हैं टू मेक द बैंकिंग सिस्टम अ लिटिल बेटर. तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट के हैं या पब्लिक मनी से बने हैं या कंपटीशन कमीशन की एक एडवाइजरी ग्रुप है. तो वो एडवाइजरी ग्रुप सुनना चाहते हैं बाहर लोग क्या सोच रहे हैं. वो इनपुट एडवाइस तो बहुत बड़ी बात है पर समझिए बाहर के इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत देते हैं उनको.
मतलब सिलोज में नहीं रह के ओपन
और गवर्नमेंट है तो भी गवर्नमेंट को बाहर से सुनाई देना चाहिए ना.
हमारे साथ हैं मिसेज रमा बीजापुरकर, मैं विकास मित्तल सेन. आगे बढ़ते हैं, आप बुक्स भी लिखते हैं?
जी लिखे हैं.
4, 5, 10 कितनी लिखी हैं अभी तक?
नहीं, चार.
चार
और हम मीडिया में कॉलम्स लिखते हैं.
हाँ, वो इन एडिशन टू बुक्स.
13-14 साल हर मंडे. अच्छा? मेरा इकोनॉमिक टाइम्स में कॉलम आता था. अभी थोड़ा कम हो गया है. जैसे वानप्रस्थ में जैसे हम जाते रहते हैं तो कम होना चाहिए ना.
नहीं, बढ़ना चाहिए.
बढ़ना चाहिए.
आपका एक्सपीरियंस है ना, आप एक्सपीरियंस पे आगे बात कर रहे हैं. पीपल वुड वांट टू हियर यू मोर Not less.
सोचने वाली बात. हाँ,
तो मेन कहाँ पे लिखे हैं आप? मार्केटिंग नेचुरली.
मैं इंडियन कंज्यूमर पे लिखी हूँ. मेरा पहला बुक का नाम है वी आर लाइक दैट ओनली. मतलब जो है बहुत सारे ये फॉरेन जो इन्वेस्टर्स आते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, वो लोग 1991 से जब हमने अपनी इकोनॉमी ओपन की है तो वो लोग सोचते हैं कि अरे बहुत देखी है, मेक्सिको ऐसी थी, थाईलैंड ऐसी थी, 40 साल पहले अमेरिका ऐसा था. तो वो सुन के मुझे बहुत गुस्सा आता था कि आप नहीं समझते हो कि हम लोग रियल टाइम में, हमारा इंटरनेट भी है और हमारा कभी कभी चाइल्ड मैरिज भी है, हमारे रोड्स ठीक, हम न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं उसको कोकोनट फूट के और टीका लगा के भेजते हैं, और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको क्लाइमेट चेंज से बहुत सारा जानकारी है. तो आप समझ नहीं रहे हो इंडिया क्या है, कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितनी अलग है. इसलिए ये बहुत सारे मैंने टॉक्स दिए थे पूरे दुनिया में इन्वेस्टर्स को. तो फिर मैंने सोचा कि एक बार लिखना चाहिए. तो ये इसकी टाइटल थी वी आर लाइक दैट ओनली. मेरे जो ये इंडियन एडिशन की थी, मेरे फॉरेन एडिशन का था विनिंग इन द इंडियन मार्केट. तो मैं इन्वेस्टर्स को समझाती थी कि वो वेस्टर्न पैराडाइम है, कॉन्क्वेस्ट है, विनिंग है. ये हमारी जो ईस्टर्न पैराडाइम है वो सरेंडर है. वी आर लाइक दैट ओनली. हम जो है सो है. वी आर व्हाट वी आर, नाउ डील विथ इट. ये दो हमारे टीचर सी के प्रहलाद हैं जो वर्ल्ड फेमस स्ट्रेटजिस्ट हैं, अमेरिका में प्रोफेसर, उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था मेरी किताब के लिए. तो उसमें एक लाइन है कि इंडिया के कंज्यूमर्स के लॉजिक आप अंदर से सुनो, बाहर से मत ट्रांसप्लांट करो, लिसन टू द लॉजिक फ्रॉम इनसाइड. वो फॉरेनर्स को बताने के लिए मैंने ये किताब लिखा था. तो ये बहुत बड़ा हिट किताब था. तो लोग उसको कोट करके आते थे. और जो इंडियन फॉरेन कंपनीज के इंडियन मैनेजर्स हैं अगर वो बोल देते फॉरेनर्स को कि आप नहीं समझते हम अलग हैं तो बात उनकी नहीं चलती. इसलिए वो मेरे शोल्डर से फायर करके मेरे किताब देखे क्योंकि मेरी तो कोई करियर नहीं है जाने के लिए. तो बोलते थे ये पहले पढ़िए. तो वो पहले वाला था तो उसके ऊपर हमने सीक्वल्स लिखे थे. तो ये कंज्यूमर्स के बारे में
मैंने आपका एक बार लेक्चर सुना था जी, वो याद नहीं आ रहा है, ओबरॉय में था एंड शायद वो फॉरेनर्स की एक बॉडी है ना ब्रिटिश वालों की,
हाँ,
क्या नाम था उसका,
अभी याद आ रहा है,
मैं मेंबर भी था उस टाइम,
ब्रिटिश बिजनेस ग्रुप,
ब्रिटिश
बिजनेस, करेक्ट करेक्ट,
बहुत इंटरेस्टिंग था, वन ऑफ द फ्यू लेक्चर्स, आई वोंट यूज द वर्ड लेक्चर, टॉक्स जो मुझे मेरे माइंड में रह गया,
थैंक
यू, ये बहुत बढ़िया था, अभी याद भी नहीं आपने क्या बोला था, ब्रिटिश बिजनेस ग्रुप में
यही सेम
यही बातें थी शायद, आई थिंक वो आपने बुक पे बार लिखा था, बोला था
शायद,
वेरी इंटरेस्टिंग, रियली कॉट माई फैंसी,
यू
नो, थोड़ा सा इस पर विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, तो दैट वॉज द थिंग विच ब्रॉट मी यू टू माई अटेंशन,
राइट।
मैंने तो अपनी बातें पूछ ली, आपको कुछ बोलना है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो आप
मेरे
चाहते हैं
करने में, आपके बारे
नहीं,
में?
मेरे बारे में नहीं, मैं तो यहाँ अपने बारे में नहीं आया हूँ, आपके बारे में,
बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ऑफलाइन बात करना पड़ेगा,
आपके बारे में, और क्या आपको लगता है कंज्यूमर, आप तो कंज्यूमर सेंट्रिक एक्सपर्ट हैं,
कंज्यूमर सेंट्रिक हैं, तो देखिए इंटरेस्टिंग है कि जो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो कंज्यूमर सोसाइटी हो गई है, बोलते हैं कि ये गलत है, मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये जो कंजम्पशन का जो मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डे टू डे प्रॉब्लम्स का सॉल्विंग, अगर प्रॉब्लम है कि आपके बाल ठीक से नहीं हो रहे हैं तो उसको स्ट्रेटन करो, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, पर दूसरा ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, हाइजीन के प्रॉब्लम्स हैं, एयर प्योरीफायर्स, एयर के प्रॉब्लम्स हैं, या इंश्योरेंस भी प्रोडक्ट होती है कंज्यूम करने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई और भी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप कंजम्पशन को बैड नेम देने के पहले सोचना चाहिए उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग टू मेक लाइफ बेटर, और हम हमेशा कहते हैं कि कंपनीज का धर्म ये होता है कि यू हैव टू ऐड वैल्यू टू कंज्यूमर्स एंड टेक वैल्यू आउट ऑफ देम, तो वो जो ट्रांजैक्शन है जो कंज्यूमर्स के लिए जो वैल्यू होता है, कंज्यूमर्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं, उनके बेनिफिट्स, वो उनके दिमाग में कंप्यूटर होता है, वो बेनिफिट्स भी सोचते हैं, कॉस्ट भी देख लेते हैं, और फिर सोचते हैं पैसा वसूल कि नहीं, वो कोई स्टूपिड क्रिएचर नहीं होते हैं कि कोई भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आ गया तो खरीद लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होता है। एक बार मैंने किसी से पूछा था, वो लोअर इनकम की थी, कि आपके घर में दो पेड चैनल्स टीवी मूवीज क्यों हैं? ये तो हमारे यहाँ वेस्ट होता है। तो उसने कहा कि मेरे घर में दो टीनेज बॉयज हैं, और अगर वो घर के बाहर स्टेप करते हैं मैडम तो पैसा उड़ा देते हैं, और मेरी मदर इन लॉ है तो वो बाजू में जाके टीवी देख लेगी, और रात को आपके घर आके मेरे को ओवरटाइम प्रीमियम लगाना चाहिए, शी वाज अ ब्यूटिशियन एंड शी सेड मेरे घर में दो टीवी चैनल्स हैं तो मेरी मदर इन लॉ घर में बैठ के खाना पकाएंगे, तो उनकी देखिए कितनी सोफिस्टिकेटेड जो हम वैल्यू प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं या टेक्नोलॉजी, लोग सोचते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी इज फॉर द रिच एंड लो टेक फॉर द पुअर, पर अगर आप किसी मॉडेस्ट इनकम आदमी, पुअर आदमी को पूछिए कि आप एटीएम के पास क्यों जाते हो, तो वो कहता है कि टेलर डिस्क्रिमिनेट्स कि मुझे ₹5 चाहिए, ₹500 चाहिए, मैं पजामा पहना हूँ या जीन्स पहना हूँ, वो टेलर डिस्क्रिमिनेट्स, मशीन को स्टेटस न्यूट्रल सर्विस मशीन से मिलता है। अगर हम फोन पे अपना कंप्लेंट बोलते हैं तो वो सेम सुनेगा आपका कंप्लेंट और मेरा कंप्लेंट, शायद एक्सेंट में थोड़ा फर्क होगा पर ज्यादा नहीं, बट आदमी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसीलिए जब हम कंज्यूमर के वर्ल्ड के अंदर जाते हैं ना, जो हम सोचते हैं कि अरे अगर लोगों के हाथ में सब्सिडी आएगी तो वो जाके लिपस्टिक खरीदेंगे, पहले लोग इतने इडियट्स नहीं हैं, पहले हमारी इतनी चाइल्ड सेंट्रिक कल्चर है, इतनी चाइल्ड ऑब्सेस्ड हैं हम लोग कि 10 में से 6 घरों में छोटे बच्चे हैं तो हम पहले हमारे बच्चों के लिए कुछ करेंगे, हमारी कंजम्पशन बहुत प्रैग्मैटिक प्रैक्टिकल कंजम्पशन है। ये जो फोन्स लोग बोलते हैं इतने सेलफोन ले रहे हैं, पर सेलफोन प्रोडक्टिविटी टूल है, आप लोकल ट्रेन में जाइए वो औरत फोन पे अपने मेड को बोल रही है बच्चे को दवाई कैसे दें, नहीं तो वो ऑफिस नहीं जा
नहीं
पाती। सिमिलरली ये जो टू व्हीलर्स हैं, टू व्हीलर नहीं है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो एक विलेज से दूसरे विलेज जाएंगे ही नहीं, इसीलिए ये जो लोग बोलते हैं कंजम्पशन इज बैड, हम बोलते हैं कि एक बार फिर से सोचिए कंजम्पशन इज नॉट बैड एट ऑल, मेक्स लाइफ बेटर।
ज्ञान की बात मुझे भी बोलने दीजिए,
बताइए।
लोग बोलते हैं कि भी है ना ये ताला है, लेकिन भगवान ने या इंसान ने जब ताला बनाया हमेशा एक चाबी भी बनी है
जी।
तो आपके अगर प्रॉब्लम्स हैं उसकी चाबी ढूंढिए, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मत ट्राई करिए, उसकी चाबी कहीं ना कहीं है, या तो आपके अंदर है या आपके पास है. तो ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हर आदमी प्रॉब्लम के थ्रू पास करता है, पर वो उसको ताला समझो, वो ताला खोलने के लिए चाबी है, उसे ढूंढिए.
बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके. सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए.
तेरे नैनों की फूल भुलैया में चाबी खो जाए. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो
हो. घनघोर अंधेरा
बाबा मुझे डर लगता है.
पीछे कोई डाकू लुटेरा.
क्यों डरा रहे हो?
आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा. ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल. सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो. हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए. हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए.
कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए.
जंगल से गुजरे और शेर आ जाए. हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए.
शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे मुझे खा जाए.
आजकल किसको खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल में ये डर है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आंख भर आए। हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आंख भर आए। कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए।
तेरे नैनों की फूल भुलैया में खो जाए।
हम तुम एक कमरे में बंद हो,
कमरे में बंद हो
और चाबी खो जाए,
और चाबी खो
जाए। आपकी लाइफ आर्मी लाइफ रही है, एंड यू बॉर्न टू आर्मी फादर, सो कुछ बताइए आप लोग कैसे मैनेज करते हैं ये। हम तो बॉम्बे में ब्रॉट अप हुए, बॉम्बे में हले फले बड़े हो गए, अभी यहीं हैं, पड़े हुए हैं, कहीं गए नहीं छुट्टियां पे को छोड़ के। पर ये आपकी लाइफ लीड कैसे होती है, हर दो साल तीन साल चार साल जाके नए इसमें माहौल में रहना, वो भी नहीं है कि आप है ना अमृतसर से कहीं है ना दिल्ली चले गए, आप तो कहीं भी चले जाते हैं पूरे इंडिया में
जी।
तो आप बताइए कि ये लाइफ क्या है ये आर्मी की।
ये जो आर्मी की लाइफ है उसके कोई कंपैरिजन नहीं होता है व्हेन यू आर इन एन आर्मी कम्युनिटी, राइट। सब लोग ऐसे ही हैं, सब कहीं से पोस्टिंग हो गए। मेरे भाई भी मिलिट्री में हैं।
अच्छा।
तो इंटरेस्टिंग है ये फ़र्क इतना है कि उनकी मेरी बेटी तो बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो उसके पहले जैक एंड जिल या बाबा ब्लैक शीप थी। मेरी नीस जो है जब वो छोटी थी उसका फर्स्ट सॉन्ग था सारे जहाँ से अच्छा।
अच्छा।
तो हम इतने पेट्रियोटिज्म से बड़े हुए हैं, इतनी पैजेंट्री है, क्लब्स भी हैं। कोई मेरे को हमारे कंजर्वेटिव रिलेटिव्स कहते थे सोडा सोसाइटी ऑफ डॉटर्स ऑफ द आर्मी, मतलब यू नो बिकॉज थोड़ा बहुत बिकॉज यू आर मोर कॉन्फिडेंट, लिटिल मोर फॉरवर्ड वही। बट देखिए, और आर्मी की कम्युनिटी लिविंग थी मेरे घर में। मेरी बेटी ने बॉम्बे में रोड भी नहीं क्रॉस किया था जब तक वो 10 साल की थी कफ परेड में। मेरी नीस, मेरी भाई की बच्ची जो मिलिट्री में थे, वो कहीं झांसी में कंटोनमेंट में कहीं घूमती थी, कोई उठा के सोचते देते थे अरे ये मेजर साहब की बेटी है, तो उसको वापस घर लेके पहुंचा देते थे। तो उतनी फ्री एंड ईजी लिविंग थी। और हम लाफ करते थे कि आर्मी में जितनी बड़ी रैंक है उतनी छोटी गाड़ी मिलती है। तो जब आप जूनियर रैंक हैं तो आपको 3 टन मिलेगा, 4 टन मिलेगा, 1 टन मिलेगा। जब आप सीओ साहब बन गए, सीओ साहब की बीवी बन गए, तब मारुति गाड़ी मिलती है। तो हर एक का सिस्टम अलग है, पर पेट्रियटिज्म ज्यादा होता था। और जहाँ पे टेम्पररी घर है, जहाँ पे जब हम ट्रांसफर होते थे, सबसे पहले किचन स्टार्ट होती थी, कुछ भी केरोसिन स्टोव किचन स्टार्ट होती थी, स्कूल एडमिशन मिल जाता था आर्मी के वजह से। कहीं पे भी कॉन्वेंट्स भी लोग प्रेफरेंस देते थे, तो बोलते थे दिस इज योर स्कूल यूनिफॉर्म, दिस इज योर न्यू हाउस, अभी चलो गेट एडजस्टेड। तो किसी तो Very ऐसे good. ही चलता है।
हाँ। हमने तो आर्मी देखी ही नहीं।
हाँ।
ना कैंटोनमेंट देखा है।
हाँ।
ये तो सब पिक्चरों में देखते हैं।
हाँ।
अब ये रियल लाइफ पर्सन है।
हाँ।
तो एक बार ये भी बात करेंगे।
बहुत ही स्पेशल और प्राउड फीलिंग होती है अपनी फैमिली से।
तो फाइनली मेरा पब्लिक इंटरेस्ट का एक हमेशा स्टेटमेंट रहता है, मैं अभी तो ये कॉमन हो गई ये चीज, लेकिन ये जो वर्ड था एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, ये मैंने पेन करा था 30 साल पहले।
अच्छा।
एंड इट वॉज नॉट जस्ट अ वर्ड, I was educating girl children in my area.
Wow.
जो भी है ना वहाँ पर वो हटमेंट्स थे, और उनके आते थे, सेलेक्ट करते थे, उनको हम पे करते थे अप टू देयर SSC. तो आई कम्प्लीटली बिलीव इन दैट। अभी भी जो मेरे कंपनी का जो CSR है, बल्क ऑफ इट गोज इनटू एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड।
दैट्स व्हेयर अ लॉट ऑफ माय चैरिटी मनी आल्सो गोज इनटू गर्ल्स एजुकेशन।
बिलीव कि आप गर्ल चाइल्ड को अगर ये करो एजुकेट, तो दी मदर बिकम्स एजुकेटेड, बिकॉज व्हेन शी बिकम्स अ मदर शी इज एन एजुकेटेड मदर, एंड द अपब्रिंगिंग ऑफ हर चिल्ड्रन आर फार बेटर।
शी फाइंड्स हर वॉइस।
यस, शी फाइंड्स अ वॉइस। तो थैंक यू वेरी मच।
वेल थैंक यू,
आप आए हमारे साथ।
थैंक यू, आई एंजॉयड इट अ लॉट।
होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।
ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल,
किसी शायर की गजल,
ड्रीम गर्ल,
किसी झील का कंवल,
ड्रीम गर्ल,
किसी शायर की गजल,
ड्रीम गर्ल,
किसी झील का कंवल,
ड्रीम गर्ल,
कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल,
ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल,
किसी शायर की गजल,
ड्रीम गर्ल,
किसी झील का कंवल,
ड्रीम गर्ल,
कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल,
ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल,
किसी शायर की गजल,
ड्रीम गर्ल।